नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है केवल वोट देना लोकतंत्र नहीं, इसको बचाए रखने में समझदारी से वोट करें। देश के 5 महत्वपूर्ण राज्यों में 5 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी गई है और कोई भी जागरूक नागरिक यह जानता है कि लोकतंत्र में वोट की क्या कीमत है। वोट का अधिकार है, वह बुनियादी अधिकार है जो लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी और हमारे नागरिकों के अधिकारों की सुनिश्चित करता है। और दुनिया भर में महिलाओं को यह अधिकार लंबी लड़ाई के बाद हासिल हुए हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल आने पर स्वागत सर आपका।
जी योगेश भाई, नमस्कार
सर। केवल वोट देना लोकतंत्र नहीं, इसे बचाए रखने में मतदाताओं की भागीदारी को कैसे देख रहे सर?
यह बात सत्य है कि लोकतंत्र में जो चुन करके आते हैं वह मतदान के आधार पर ही चुन करके हमारे प्रतिनिधि आते हैं और मतदान दुनिया में बदलाव का सबसे बड़ा साधन है। परंतु मतदाता को यह चाहिए कि जब अपने मत का प्रयोग करने जा रहा है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने देश के पंचवर्षीय भविष्य के लिए, तो उसे चाहिए कि सत्यनिष्ठता के साथ मतदान करे। वह जाति को भूल जाए, धर्म को भूल जाए, मजहब को भूल जाए और अपने स्वार्थ को भूल करके मतदान करे। यदि वो जाति, मजहब, धर्म और स्वार्थ में बंध करके मतदान करेगा तो मतदान तो कर देगा परंतु उसका जो ध्येय है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ध्येय यह है कि हम अपने मतदान के माध्यम से अपने राष्ट्र के भविष्य को तय करते हैं, अपने राष्ट्र के निर्माण करने जाते हैं और अपने राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों की खुशहाली को तय करने जा रहे हैं। तो मतदान देना एक नैतिक कर्तव्य है, एक अनिवार्य हमारा कर्तव्य है। परंतु मतदान के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि जब हम मतदान देने जाए तो हम अपने कर्तव्य निष्ठता को धर्म निष्ठता के साथ जोड़े। और धर्म निष्ठता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने देश के निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों बन जाता है। तो उस समय हमें अपने स्वार्थ को बाजू में रख करके, अपनी तमाम सुविधाओं को बाजू में रख करके, दुनिया के सुविधाओं को देख करके मतदान करना होगा, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है मतदान। यदि हमारे मतदाता घर से निकल करके मतदान नहीं करेंगे तो पता चले कि कम मत पर अयोग्य व्यक्ति चुन करके चले गए, और जब अधिक से अधिक मतदाता लोकतंत्र में हिस्सेदारी करेंगे तो उनके माध्यम से जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वह प्रतिनिधि योग्य भी होगा, समझदार भी होगा और एक प्रकार से जन दबाव में भी होगा। तो बटन मतदाता इसलिए दबाए कि अपने स्वार्थ का त्याग करे और जिसको चुन करके दे वह जनता के दबाव में हो, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत हो सकता है।
जी सर। सर, सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल हो,
जी
लुभावने वादे हो रहे हैं तो सर जनता इसको किस तरीके से देखती है?
यह तो एक आजकल का सत्तारूढ़ दल और विपक्ष, आज जो विपक्ष में है वो कोशिश कर रहा है कि मैं सत्ता में आ जाऊं और जो सत्ता में हो वो कोशिश करता है कि मैं सत्ता में बना रहूं। एक प्रकार से कुर्सी के प्रति इनका इतना चुंबकीय आकर्षण बढ़ गया है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं बिना सिद्धांत और बिना ध्येय और बिना विचार के, उनके लिए सत्ता सब कुछ बन गई है। तो उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए जनता को न केवल लालची बना रहे बल्कि जुआरी और नशेड़ी भी बना रहे। योगेश भाई, आप देखिए कि मतदाता को शराब भी बांटा जा रहा है, सट्टा लगाने की आदत भी दी जा रही है और यह जो लोग प्रलोभन दे रहे हैं, मेरी तो यह मांग है कि ये जितने प्रलोभन दे रहे अपने रैलियों में राजनीतिक दल के लोग, चुनाव आयोग से हमारी मांग है और मतदाता बंधुओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप कहिए कि ये लोग अपने अपने घोषणा पत्रों का रजिस्टर्ड करें और चुनाव आयोग उसको रजिस्ट्रेशन करे, और अगर उसकी एक सीमा, समय सीमा तय हो और उन समय सीमा में इनके जो किए गए वादा पूरा नहीं हो रहे तो उस राष्ट्र के और उस दल के जो नामांकन ये है, दल का जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज किया जाए और उसकी सदस्यता समाप्त किया जाए, और जो व्यक्ति ने अगर व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट होकर के वादा कर रहे हैं उनको भी रजिस्टर्ड किया जाए, अगर वह काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी भी सदस्यता खारिज किया जाए और उनके दल की भी सदस्यता खारिज किया जाए। परंतु आज आप देख लीजिए, आज तक यह नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग भी आज एक प्रकार से राजनीतिक दल और सत्ता का बाबू बन गया है, दफ्तरी बन करके काम कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के इनके चुनाव वचन पत्रों को, घोषणा पत्रों को रजिस्टर्ड करे। जब तक रजिस्टर्ड नहीं करेगा तब तक ऐसे ही रेवड़िया बांटते रहेंगे। यह रेवड़िया शब्द हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है इस पे बोलने वालों को भी सोचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार में जाकर के रेवड़ी बांटने की शुरुआत की है और आज सारे दल बांट रहे, तो प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि अपने आचरण और कर्म से व्यवहार में लाए, जो बोल रहे उसको व्यवहार में लाए, परंतु वो व्यवहार में नहीं लाते। जब दूसरे लोग वादा करते हैं तो कहते हैं कि ये रेवड़िया है, और जब वो कहते हैं तो स्वयं तय नहीं कर पाते कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग सारे दलों के घोषणा पत्रों को, वचन पत्रों को और निर्दलियों के भी वचन पत्रों को रजिस्टर्ड करें और एक समय सीमा तय करें कि आपको समय सीमा के अंदर यह कार्य करना है। यदि नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता और आपके दल की जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द किया जाएगा। तब जाकर के रेवड़ी बांटने का और यह झूठ बोलने का कल्चर समाप्त होगा।
जी सर। सर, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने हेतु और क्या साधन देखते हैं सर?
लोकतंत्र उतना ही, लोकतंत्र को यदि मजबूत बनाना है, जनता के बीच में रखना है, तो सबसे पहले सभी व्यक्ति को संविधान का अध्ययन करना होगा। और संविधान के अनुच्छेद 19 में जो लिखा है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर कायम रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि सभी मतदाताओं को गांधी के सत्याग्रह को अपनाना होगा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिविल नाफरमानी को अपनाना होगा। लोहिया कहते थे कि बदलाव के 3 साधन है, जेल, फावड़ा और मतदान। जेल मतलब आप सत्याग्रही बनिए और जेल जाइए, सत्याग्रही का मतलब है कि सत्य बोलने के लिए आग्रह करिए, सत्य के लिए लड़िए और उसके लिए जेल भी जाना पड़े तो जाइए। मधुली में एक समाजवादी विचारक थे, सांसद भी रहे, वो बार बार जेल गए जनता के सवाल पर। गोवा क्रांति के वो नायक भी रहे, उसमें मार भी खाए उन्होंने। उनसे पूछा गया कि जेल का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जेल का मतलब है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। तो बार बार जेल गए इसलिए कि जनता के सवाल पर लड़े। दूसरा है फावड़ा, इसके मतलब है कि रचनात्मक काम करिए, आप अपने काम को मत छोड़िए। आज मतदाता क्या कर रहा है, अपने काम को छोड़ करके नेताओं के पीछे घूमता है, सरकार के पीछे घूमता है कि हमारा राशन कार्ड बना दीजिए जी, हमारे घर का शौचालय बना दीजिए जी, हमको हमारा ये काम करा दीजिए जी। तो ये नेता उनके कमजोरियों को पकड़ करके उनको चूसने का काम कर रहे। तीसरा जो काम है, जो बदलाव का सबसे बड़ा साधन है, मतदान। तो जरूरी यह है कि सभी लोग खुल करके मतदान करें, अपने स्वार्थों को भूल जाए। तीसरी जो बात है कि लोकतंत्र उसी समय मजबूत होगा कि आपके बीच में जन आंदोलन कितना है, आपका आंदोलन कितना सत्यनिष्ठ है और आप सरकार के खिलाफ बोलने की कितनी क्षमता रखते हैं। अगर इन बातों पे जाएं तो लोहिया बार बार याद आ जाते हैं। लोहिया तो यहाँ तक कहते थे कि यदि सड़कें सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। आज आप देख लीजिए योगेश भाई कि भारत की पूरी सड़कें सुनी पड़ी है, जन आंदोलन कहीं नहीं है और हमारी देश की चुनी हुई विधानसभा है और देश की चुनी हुई संसद केवल आवारा ही नहीं बल्कि तानाशाह होकर के काम कर रही है। इसलिए लोहिया कहते थे कि सरकार को तवे पर पड़ी हुई रोटी की तरह उलटते और पलटते रहना चाहिए। तो जरूरत इस बात की है कि मतदाता अंधभक्ति में मतदान न करे बल्कि सरकार के कार्यों, उसके आचरणों, उसके कर्मों और उसके घोषणा पत्र पे कितने काम किया है उस आधार पर मतदान करेगा, तब जाकर के लोकतंत्र और मजबूत होगा।
जी सर। सर, आजकल देखा जा रहा है कि लोकतंत्र में जन आंदोलन,
जी
आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे लोकतंत्र में जन आंदोलन को कमजोर करने के पीछे क्या कारण नजर आते हैं, क्या देखते हैं?
जी, ये आपका सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है योगेश भाई, थोड़ा सा मैं इस पे समय लूंगा आपका। लोकतंत्र में जन आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है।
जी,
जन आंदोलन की इसलिए कि सरकार को अगर सही दिशा में लाना है, सरकार को अगर जनता के पक्ष में लाना है, जनता के बीच में काम करना है, तो जन आंदोलन जरूरी है। जनता अपनी मांगों को लेकर के जाए, और इसका संविधान में भी है कि आप शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं ताकि सरकार को सचेत किया जाए। अब सवाल आता है कि आज के जन आंदोलन, आज का जो जन आंदोलन हो रहा है योगेश भाई, उसमें देखिए कि कई प्रकार के प्रायोजित हो जा रहा है। हालांकि होना चाहिए जन आंदोलन, हम उसके पक्ष में है और हम खुद चाहते हैं कि जन आंदोलन हो। हम लोग गांधी लोहिया को मानते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जन आंदोलन हो, जनता दबाव में, सरकार दबाव में रहे जनता के। परंतु आज जो जन आंदोलन हो रहे है वो जन आंदोलन को देख लीजिए कि कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो जन आंदोलन के करने वाले लोग यह चाहते हैं कि तुरंत परिणाम निकल जाए, जबकि यह संभव नहीं है। दूसरा कि उन जन आंदोलनों में आजकल जो अपने आप को जो स्वयं सेवक कह ये जनसेवक कहने का काम कर रहे हैं, स्वयं सेवक नहीं जनसेवक जो कहने का काम कर रहे हैं, माने कि एनजीओ जो चला रहे, स्वयं सेवी जो संस्थाएं चला रहे, यह एनजीओ अपने को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कहती है, परंतु आप देखेंगे कि यह सरकार के तरफ ललायित रहती है पैसे लेने के लिए। तो आजकल अधिकांश जन आंदोलनों में यह एनजीओ वाले प्रवेश कर गए। आप खुद सोच लीजिएगा कि जो लोग सरकार से पैसे ले रहे वो लोग क्या जन आंदोलन चलाएंगे और कौन सा उनका आंदोलन मजबूत हो सकता है। तीसरी जो बात है कि आजकल के जन आंदोलनों में हिंसा प्रवेश कर गया है। सरकार और पुलिस जब बैरिकेटिंग करती है तो उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है, उधर से पुलिस के लोग लाठी चलाते हैं, सरकार के लोग लाठी चलाती है, इधर से आंदोलन करने वाले भी कुछ ना कुछ हिंसात्मक साधन अपना लेते हैं, तोड़फोड़ करने लगते। अधिकांश आंदोलनों में आजकल यह देखा जा रहा है, जबकि आंदोलन की कमजोरी है। आंदोलन की मजबूती तो उस समय होगी जब आप स्वयं बैठ जाइए और पुलिस को कहिए कि जितना लाठी चलाना है चला लो। क्योंकि गांधी के आंदोलन में आप देखिए, सत्याग्रह में देखिए, कभी आंदोलन करने वाले सामने वाले पे वार नहीं किए, सामने वाले के वार को सहे है। इसलिए गांधी ने जब 1942 में करो या मरो का नारा दिए तो उन्होंने यह कहा कि करो या मरो। उन्होंने अपने लोगों को सभा में कहा कि यह आंदोलन उसी समय मजबूत किया जाएगा और उसी समय मैं चालू करूंगा जब आप लोग शपथ लेंगे कि आंदोलन में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और 1975 के जब छात्रों के आंदोलन में जेपी गए तो जेपी ने भी विद्यार्थियों से पहले अपील किए कि आप लोग हमको वचन दो कि अपने आंदोलन में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं करोगे तब आंदोलन किया जाएगा, और आंदोलन सफल रहा। आज के आंदोलन इसलिए सफल नहीं हो पा रहे कि एक तो मैं बताया कि इसमें एनजीओ वाले घुस जा रहे, दूसरे की आंदोलन करने वाले भी सोच रहे कि तुरंत परिणाम निकल जाए, तीसरे की आंदोलन हिंसक होने लग रहा है, और चौथा इसमें यह है कि मीडिया जो है सत्याग्रह को कवर नहीं कर रही है, मीडिया जो हिंसक आंदोलनों को कवर करने का प्रयास कर रही है, और जनता जो है अपने धैर्य खोने लग रही है, तुरंत चाह रहे कि परिणाम निकल जाए, जबकि तुरंत परिणाम नहीं निकलता है। सरकार को झुकाने के लिए सत्याग्रह की जरूरत है। आज देख लीजिए आंदोलनों को डाइवर्ट करने के कई तरीका अपनाए गए हैं। आप देखे होंगे कि दक्षिण भारत के किसानों ने एक बार दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन किए तो चूहा खा रहे थे। अरे भाई ये आंदोलन का कौन सा रास्ता है, अपना मूत्र पी रहे थे, ये आंदोलन का कौन सा रास्ता है। आजकल एक नया प्रचलन चला है कि सरकार तानाशाही है लेकिन हम कह रहे कि सरकार को सद्बुद्धि लाने के लिए हम यज्ञ करेंगे। अरे भाई यज्ञ से अगर सरकार को सद्बुद्धि आने वाली होती तो बरसों से यज्ञ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान तो धर्म का देश है, हिंदुस्तान तो हर देवी देवता का देश है, यहाँ तो वर्षों से यज्ञ होता आ रहा है, क्यों नहीं सरकार सुधर जा रही। एक और नया प्रश्न चला है कि लोग मुंडन करा रहे। अरे मुंडन कराने से कौन सा क्या होने वाला है। अब क्या हो रहा है, अब नया ट्रेंड निकला है कि सरकारों का श्राद्ध कर दिया जाता है। भाई जब आप श्राद्ध कर दिए तो आप मांग किससे करने जाएंगे, आपने तो मृत घोषित कर दिया उसको। ये सारे टूल्स जो है आंदोलन को कमजोर करने का एक कड़ी बन गए। जरूरत इस बात की है कि आंदोलन को सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी के रास्ते लाया जाए। सत्याग्रह यानी एकदम समय के साथ आंदोलन होना चाहिए, सत्य होकर के आप आग्रह करते रहिए, और सिविल नाफरमानी वक्ति एक साधन था कि जैसा समय उस हिसाब से आप आंदोलन करिए परंतु उसमें हिंसात्मक साधनों का प्रयोग न करिए। अगर इन दो साधनों को हम ला रहे हैं तो हमारा जन आंदोलन सफल होगा, और हमारे आंदोलन करने वाले साथियों को भी चाहिए कि वह पहले जनता से वादा कर ले, जनता से वचन ले ले कि हमारे आंदोलनों में हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और मीडिया में कवरेज पाने के लिए आंदोलन न करे, बल्कि सरकार के साथ वार्ता करने के लिए और सरकार को सही दिशा देने के लिए आंदोलन करें, तब जाकर के हमारा जन आंदोलन मजबूत होगा। और मैं बहुत मजबूती के साथ कहना चाहूंगा कि एनजीओ की भूमिका से जन आंदोलन दूर रहे। अगर एनजीओ वालों के भरोसे जाकर के जन आंदोलन करेंगे तो कभी जन आंदोलन सफल नहीं हो सकता है।
जी सर, प्रदेश में इस वर्ष 18 से 19 वर्ष के युवा 22,36,000 से अधिक युवा है, ये युवा पहली बार मतदान करेंगे जी। अभी विधानसभा चुनाव में इस मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
पहले तो सबसे पहले मैं अपने नए मतदाता साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जी। और इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा और इसलिए भी खुशी हो रही है कि वो एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। यह युग तकनीकी का युग है, उनके मोबाइल पे, उनके ऐप पे, उनके सोशल नेट पे सारी बातें चल रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जब मतदाता आएंगे तो इनका दिमाग कोरा है, इनको तो चाहिए कि एकदम स्वतंत्र तरीके से मतदान में हिस्सेदारी करे, और केवल हिस्सेदारी ही नहीं करे, 100% मतदान करने जाए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोटर है। यह अपने मतदान को उस दिशा में करे जिस दिशा से इनके सपने पूरे हो सके, और इनके सपने के साथ साथ राष्ट्र का सपना पूरा हो सके और राष्ट्र मजबूत हो सके। तो मैं इन युवाओं से, 22 लाख अपने साथियों से आह्वान करूंगा कि आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को देखिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए जाकर के मतदान करिए और अनिवार्य तरीके से जाकर के मतदान करिए। अपने मतदान को लूज मत करिए, मतदान के दिन जरूर जाइए, मतदान करिए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए आप मतदान में हिस्सेदारी करिए, ताकि भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, भारत पुनः दुनिया के अंदर विश्व गुरु की अपनी जो छाया है उसको कायम रख सके।
जी, थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाने पर केवल वोट देना लोकतंत्र नहीं इसको बचाए रखने में हम सब समझदारी से वोट करें इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाने के साथ साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाने को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
जी सर, योगेश धन्यवाद।